काम सेसम निवेदयामास पित्रे तेन च तद्गुरो चोदित प्रोक्षणायाः दुष्टम् एतद् कर्म।
माताजी
तेषां निवेदयामास पित्रे तेन च तद्गुरो चोदित प्रोक्षणायाः दुष्टम् एतत् कर्मकाम् सेसाम् उच्छिष्ट निवेदयाम्। उसने प्रदान किया, निवेदयाम आस साथ में, उसने प्रदान किया पित्रे अपने पिता को, तेना उसके द्वारा, च बी तद्गुरु उनके गुरु ने, चोदित आग्रह किए जाने पर, प्रोक्षणाय शुद्ध करने के लिए, आह कहा दुष्टम प्रदूषित एतत् यह मांस अकर्मकम श्राद्ध में अर्पित करने के अयोग्य। अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा है। शिला प्रभुपाद महाराज की। श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है, विकुक्षी ने शेष मांस राजा इक्ष्वाकु को लाकर दे दिया, जिन्होंने उसे शुद्ध करने के लिए वशिष्ठ को दे दिया। लेकिन वशिष्ठ यह तुरंत समझ गए कि उस मांस का कुछ भाग विकुक्षी ने पहले ही ग्रहण कर लिया है, अतः एवं उन्होंने कहा कि यह मांस श्राद्ध में प्रयुक्त होने के लिए अनुपयुक्त है। यज्ञ में प्रयुक्त की जाने वाली किसी भी वस्तु को आर्च्य विग्रह को भेंट किए बिना चखा नहीं जा सकता। हमारे मंदिरों में यह नियम लागू है, जब तक भोजन आर्च्य विग्रह को अर्पित नहीं कर दिया जाता तब तक कोई व्यक्ति रसोई से भोजन प्राप्त नहीं कर सकता। यदि आर्च्य विग्रह को भेंट करने के पूर्व कुछ भी निकाल लिया जाता है तो सारा भोजन दूषित हो जाता है और उसे नहीं चढ़ाया जाता। जो लोग आर्च्य विग्रह की पूजा करते हैं उन्हें इसे ठीक से जान लेना चाहिए, जिससे वे आर्च्य विग्रह पूजा में अपराध करने से बचे रहें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की वांछा कल्पत्रुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। यहाँ उपस्थित सारे वैष्णव जन को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और जैसा कि मैं हमेशा दोहराता हूँ, दोहराना चाहूँगा, हाँ उसे बार बार मुझे याद करने की आवश्यकता है कि मैं व्यास आसन पर बैठकर प्रवचन देने के सच में ही लायक नहीं हूँ, टोटली डिसक्वालिफाइड हूँ। बट वैष्णवों के आदेश से ये हिम्मत करता हूँ, असिला प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से, व्यास देव जी के कृपा से ये प्रवचन देने की मैं प्रयत्न करता हूँ। तो आप सभी लोगों से ये प्रार्थना है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि ये सेवा जो मुझे दी गई है वो मैं ठीक से कर सकूँ। विशेष विशेष प्रणाम मेरा एज यूजुअल बनामाली प्रभु, शुद्ध सेवक प्रभु, कमल लोचन प्रभु और सारे मंदिर के भक्तगण, ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, जो मंदिर में जुड़े हैं, सेवा कर रहे हैं कोई ना कोई, उन सभी से प्रार्थना। हरे कृष्ण। ये श्रीमद् भागवतम का 9वां स्कंद का 6ठा अध्याय है, सौब्री मुनि का पतन। वैसे वो कथा अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले जो श्राद्ध के लिए इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र विकुक्षी को जो श्राद्ध में अर्पण करने के लिए मांस लाना था उसके बारे में आदेश दिया था, जो कल माधवानंद प्रभु ने बहुत ही अच्छी तरह से उसको समझाया हम सब लोगों को कि कैसे शास्त्रों में कहीं कहीं जगह पे ये कहीं व्यभिचार का वर्णन है, कहीं मांसाहार का वर्णन है, तो वो कोई विशेष परिस्थिति में, विशेष काल में, विशेष व्यक्तियों के लिए कोई ना कोई ऐसा आदेश होता है, लेकिन ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये यहाँ दिया है तो सब लोग कर पाएंगे, क्योंकि न वो काल है और ना ही वो हम स्थान या व्यक्ति है। जैसे हम लोग कोई क्षत्रिय नहीं है, या अभी काल भी कौन सा चल रहा है, कलयुग चल रहा है, और ये सब बातें सत्युग की है जहाँ पे कोई विशेष परिस्थिति में ये बताया गया था। जैसे अंगिरा मुनि भी देखते हैं हम लोग के पुत्र प्रदान कर रहे हैं, तो ये सब अलग ही स्तर होता है। ये एक ऐसा स्तर है जिसे समझना आज के युग में लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। जैसे थोड़े दिन पहले एक भक्त ने मुझे प्रश्न पूछा कि मुझे बहुत हृदय में कामना उत्पन्न होती है, तो क्या कारण हो सकता है? तो मैंने पूछा कि आपको क्या लग रहा है, आप क्या कारण हो सकता है, आप आपके बारे में अच्छी तरह से जानते मेरे से ज्यादा। तो बोले कि मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि भगवान कृष्ण अनेक 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 गोपियों के साथ रास विलास वगैरह करते हैं, तो क्योंकि उनके मन में ऐसी भावना है, तो क्योंकि मैं उनका अंश हूं तो मेरे मन में भी वो आंशिक भावना रहेगी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये सुनकर उनसे। वो कम से कम 15 साल से तो इस्कॉन से जुड़े हैं, करीबन 15 साल से, और रेगुलर है, ऐसा भी नहीं कि वंस इन अ ब्लू मून वाले नहीं है, एक साल में एक बार आते हैं ऐसा नहीं है, प्रवचन भी सुनते हैं, आरती कीर्तन भी करते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा ये कि 15 साल के बाद व्यक्ति भी ऐसे कैसे सोच सकता है कि इस जगत का जो काम है, जो लष्ट है, जो इंद्रिय भोग है, वो उस जगत के साथ कुछ तुलनात्मक होगा। टोटली डिफरेंट, एकदम ही अलग चीज है, ऐसा कुछ आध्यात्मिक जगत में है ही नहीं। लष्ट जो काम या इंद्रिय भोग नाम की कोई चीज है ही नहीं, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती उससे। इस जगत के लष्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। जैसे दूध से एक बार दही बना, लेकिन दही से वापस दूध नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरह आध्यात्मिक जगत का जो कृष्ण प्रेम आदि रस है, जो लव, जो शुद्ध प्रेम है, वो जब इस जगत में आता है हाँ, इस जगत के तीन गुणों में, तीन गुणों का जो फर्मेंटिंग एजेंट उसमें मिल जाता है, हाँ, जैसे हम लोग दूध में कुछ थोड़ा सा दही डालते हैं ना, वैसे जब तीन गुण का फर्मेंटिंग एजेंट जब इस आदि रस में यहां मिल जाता है तब ये काम में प्रवर्तित होता है। हाँ, हालांकि दूध और दही के उदाहरण में दही से वापस दूध नहीं होता है, लेकिन इस उदाहरण में दही से वापस दूध चाहे तो कर सकेंगे। ये ब्यूटी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल प्रोसेस की, कि अगर आप चाहें तो इसी काम को वापस वो कृष्ण प्रेम में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अब प्रोसेस बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि फर्मेंटेशन हो गया तो नहीं हो सकता है। फर्मेंटेशन अपनी इच्छा से प्रकृति के तीन गुणों से हमने किया है, तो ये कभी गलती नहीं करनी चाहिए कि कृष्ण के यहां का जो वर्णन किया जाता है रासलीला में या दशम स्कंद में जो कुछ भी, वो अपने जगत का कुछ काम के जैसा थोड़ा सा मिला जुला ऐसा कुछ, हाँ, थोड़ा पवित्र रूप में, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। हाँ, देर इज नो लस्ट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ऐसा कोई सोचता भी नहीं है, किसी को वैसी कोई चीज की पता ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं तो कहां से पता होगा। जैसे अंधकार जैसा कोई चीज ही नहीं है, अंधकार तो हम जब प्रकाश नहीं है तो हम कहते हैं कि अंधकार है, एक्चुअली में अंधकार नहीं है। तो जब कृष्ण प्रेम का अभाव है तो उसे काम है, लेकिन वैसे उधर कोई काम नहीं है क्योंकि उधर तो कृष्ण प्रेम ही है, अंधकार इधर है, लष्ट हमारे हृदय में है। ये लष्ट का कारण फिर मैंने उनको समझाया कि लष्ट का क्या कारण हो सकता है, अनेक कारण होते हैं। मैंने कहा कि हम कई कितने सालों से इस्कॉन से जुड़े हैं फिर भी हम लोगों का अनुभव है कि ये लष्ट नहीं जा रहा है, ये काम नहीं जा रहा है। यहां तक कि कई कितने सालों के बाद अच्छे अच्छे भक्त, अच्छे अच्छे गुरु महाराज के सामने से जाके किसी की पत्नी को प्रपोज करके आते हैं, बड़ा आश्चर्य लगता है जब सुनने में आता कि इतना गंदा काम ये लोग प्रयत्न कैसे करते हैं, तो ये लष्ट क्यों नहीं जा रहा है। हाँ, इसका कारण एक्चुअली आज के श्लोक में दिया है, इसका उत्तर आज के श्लोक में एकदम ही क्लियरली बताया गया है कि लष्ट क्यों नहीं जा रही है। इसका कारण जो उसका मूल है वो हम समझ लिए, लेकिन इसका निकालना जो हम करते हैं उससे क्यों नहीं होता है। इसका मूल कारण है, लष्ट को निकालने के लिए हमें दो ही चीज यहां पे मदद कर सकती है, या तो हरिनाम, हाँ, जितनी शुद्ध मात्रा में वो हो, या शुद्ध कृष्ण प्रसाद, ये दो ही चीज है। जैसे शुरुआत में शिला प्रभुपाद जी अमेरिका गए, जब उन्होंने देखा कि सभी लोग कामी हैं, सभी लोग व्यभिचारी हैं, सभी लोग मांसाहारी हैं, है ना, सभी लोग हैं, तो क्या किया शिला प्रभुपाद जी ने, पता है कि हरिनाम भी शायद ज्यादा नहीं करेंगे तो थोड़ा कीर्तन करते थे, जब तो कोई 16 माला 32 माला करने वाला नहीं है, सिंपल फॉर्मूला शुद्ध कृष्ण प्रसाद का वितरण, सबको शुद्ध प्रसाद। वो प्रसाद क्यों पोटेंट इतना रहता था और हमारा प्रसाद में क्यों इतना पोटेंसी नहीं आता है, ये आज का श्लोक से लेना देना है। आज के श्लोक में ये क्या बताया जाए, जो विकुक्षी है वो जब यज्ञ के लिए मांस सामग्री जंगल में लेने को लिए गया तो उस कार्य में वो थक गया, हाँ, शिकार करते करते, जमा करते करते वो थक गया, और थकने के कारण क्या हुआ, वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा, इंटेलिजेंस को खो बैठा, और इंटेलिजेंस को खो के वो सोचा कि इसमें से थोड़ा मैं खा लूं, हाँ, मेरे शरीर की तृप्ति हो जाए, तो उसने उसमें से एक मांस का टुकड़ा खा लिया। चलो खा लिया वहां तक ठीक था, श्री राधा गिरिधारी जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री निताई गौर चंद्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। खा लिया तब तक ठीक है, लेकिन अगर खा ही लिया है तो उसको फेंक दो, जो बचा हुआ उच्छिष्ट है आपका उसको फेंक दो, स्नान करो नदी में जाके, अच्छे से वस्त्र पहनो, वापस वो यज्ञ का कार्य जो है वो संपन्न करना है, इकट्ठा करना है, उसे केवल भगवान के लिए, ये यज्ञ के लिए इकट्ठा करो, और आके पिता को और वशिष्ठ मुनि को दीजिए। वो भी उसने नहीं किया, बस वही अपना ही उच्छिष्ट लेके चला आया और दे दिया। अब पिताश्री को समझ में नहीं आया, लेकिन वशिष्ठ मुनि समझ गए कि ये तो इसका उच्छिष्ट है, ये यज्ञ के लायक नहीं है। ठीक वैसी गलती जानबूझकर या अनजाने में हम लोग में से कई कितने लोग करते रहते हैं, विशेष करके हम गृहस्थों को आदत है या पता है हम लोगों को, हम लोग मार्केट जाते हैं यही सोचते हैं मुझे क्या खाना है, मेरे बच्चे को क्या अच्छा लगता है, मेरी पत्नी को क्या अच्छा लगता है, हमारी इंद्रिय भोग के लिए हमें कुछ लेना है। हम कितनी बार ये सुन चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। फिर कभी कभी कुछ लोग मुझे कहते हैं कि क्या एक ही बात आप दो बार, पांच बार, दस बार लेक्चर में बताते हैं, इधर भी वही बताता, उधर भी यही बताता। तो मेरा प्रश्न रहता कि लेकिन फर्क किधर आया, मैंने दस बार बताया तो ना मेरी मेंटालिटी में कोई चेंज आ रहा है, ना हमारे आजू बाजू लोगों को हम देख रहे नहीं आ रहा है। तो एक ही बात को 10 बार, 25 बार, 50 बार बोलने पे भी और बार बोलने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि हमारे में चेंजेस कहां आ रहे हैं। कल माधवानंद प्रभु ने कितना वो सिंपल स्टोरी लिया चानकाजी का, सबको पता है ना। राधानाथ महाराज के अनेक प्रवचनों में मैं कितनी बार सुनता हूं, बार बार जगाई मदाई का स्टोरी, सबको पता है। लोग कहते हैं ये क्या, हमको तो पता है ये, ऐसा ही क्यों चल रहा है, क्यों नया कुछ लेके आइए ना, कुछ पद्म पुराण से, कुछ स्कंद पुराण से, कोई अष्टांग पुराण से, कहां कहां से, कौन से खटवांग पुराण वगैरह, कहीं ना कहीं से कुछ लेके आइए ना, तब जाके लगता है कि प्रवचन बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है। लेकिन क्या ये मजा करने के लिए हम लोग यहां आते हैं? मजा ही तो करने के लिए भौतिक जगत में आए थे, और देख रहे हैं कि मजा तो मिल नहीं रही है, सजा ही सजा चलती जा रही है। तो अब उस मजा को बंद करना है, उस मजा की जो इंक्लिनेशन, जो मेंटालिटी है ना, वो भी हम मंदिर में आके सोचते कि कुछ मजा करना है, बट मजा एक्चुअली कृष्ण को करवाना है, और हमें तो केवल उनका दास या सेवक बन के वो प्रैक्टिस करते रहना है कि हमें मजा नहीं चाहिए अभी, और मजा भी चाहिए तो स्पिरिचुअल चाहिए, आध्यात्मिक चाहिए। ये मटीरियल मेंटल प्लेटफॉर्म का, हाँ, जो बुद्धि के स्तर का जो अच्छा एक नया कोई चीज सुनने में आए, ये जो वृत्ति है ना, ये जो मेंटालिटी है ना, ये हमें भक्त नहीं बना सकते। हमें एक ही चीज को 10 बार, 12 बार, 15 बार, बार बार सोचना है, जब तक हम उसमें सफल नहीं हुए। स्कूलों में भी तो यही होता है, अगर कोई पांचवी कक्षा में फेल हुआ तो उसको दोबारा वहीं रखा जाता है, वो कहेगा क्या रिपीट करवा रहे हो, अरे भाई तुम पास नहीं हुए इसके लिए वापस वापस वापस। कहीं कहीं बार देखा जाता है इंजीनियरिंग में लोग 5-5, 6-6, 7-7 साल एक ही एफई एसी में ही पड़े रहते हैं, वापस वापस वापस, क्यों, फेल हुए इसके लिए। भले ना एक ही जैसा लग रहा है, एक ही बात है, कुछ नया नहीं आ रहा है, लेकिन जब तक हम फेल है किसी चीज में, हमको करना चाहिए, सुनना चाहिए। तो प्रसादम का ऐसा है कि जब मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले हमें कृष्ण को क्या अच्छा लगता है वो सोचना चाहिए, उनके लिए कुछ खरीदना चाहिए, विशेष करके मंदिर निवासित भक्तों को। और गृहस्थ, गृहस्थ क्योंकि हमेशा ड्यूअलिटी में फंसा है, कुछ बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है, कुछ पत्नी का, घर वालों का, माता पिता का ध्यान रखना पड़ता है, तो उनको मैं हमेशा कहता हूं कि दो थैली लेके जाइए, एक कृष्ण की एक आपकी, ठीक है, थोड़ा बैलेंस करके जीना सीखो। हाँ, एक कृष्ण की थैली ले जाओ कि मुझे ये भी हमारे सदस्य है, एक मेंबर के, एक परिवार के सदस्य है, उनके लिए भी कुछ एक लेना है, और एक अपना परिवार के लिए जो कुछ लेने की इच्छा है। जो कृष्ण के लिए खरीदा उसमें कोई भी अपना चेतना मत लगाओ कि इसमें से कुछ आधा प्रसाद मुझे वापस मिले, ये डेंजरस मेंटालिटी है। जब कुछ कोई मंदिर के लिए भी खरीदता है ना कुछ फल या मिठाई, तो वो क्या सोचता है मालूम है, मैं जाके राधा गिरधारी जी को अच्छी तरह से दूंगा, पुजारी ऑफर करेगा और फिर ऑफर करके मुझे वो प्रसाद देगा, फिर मैं वो खाऊंगा। अगेन फेल्ड, एक्चुअली वहां पे फेल हो गए, खाऊंगा ये जैसे ही विचार आ गया। यहां तक कि माधवेंद्र पुरी ने भी जब खीर के स्वाद के बारे में सोचा तो तुरंत अपने आप में पश्चाताप किया कि गलत है, नहीं सोचना है मुझे। तो जो चीज हम कृष्ण के लिए लेते हैं, खरीदते हैं, उसको वापस हमें लेना ही नहीं है किसी भी हालत में, यही सोच के साथ हमें बाय करना है, परचेस करना है, हमको यहां पुजारी को देना है, और ये पुजारी ही फिर उनको ऑफर करे, और पुजारी और यहां मंदिर के जो ब्राह्मण भक्त है वही उसको ले। मैं उसमें से एक भी कण वापस लाने की तैयारी में नहीं हूं। हां, अगर ऐसा ही धाम में हुआ तो वृंदावन में गए तो वहां हम लोग प्रसाद लोगों के लिए लाने के लिए, हाँ, घर के लिए और लोगों को देने के लिए लाने की सोच रहे, तब क्या करें, वहां भी तो ये परिस्थिति आती है ना कि हम मिठाई खरीद के राधा श्याम सुंदर को दे रहे हैं वृंदावन में, लेकिन हम तो इस भाव से दे रहे कि भगवान को केवल दिखाना है, बाकी तो मुझे ही लाना है, अगर जाके मुझे और मेरे परिवार को खाना है तो वहां क्या करें। वहां भी क्लियरली अगर आपको 5 किलो पेड़ा लेना है तो 6 किलो ही लीजिए, 1 किलो राधा श्याम सुंदर का अलग से, और वो उधर देके ही आइए, उसमें से एक भी वापस नहीं लाने का। बाई चांस पुजारी ने वापस ऑफर किया तो रिस्पेक्टफुली हम लेंगे और वहीं उपस्थित भक्तों को बांट देंगे, उसमें से तुलसी पत्र केवल अपने 5 किलो में रख दीजिए। हाँ, वो एकदम क्लियर चेतना जिसकी रहेगी ना, उसको वो प्योरिफाइड एकदम बोलते ना शुद्ध प्रसाद मिलेगा। और वो ऐसा शुद्ध प्रसाद ग्रहण करने वाले व्यक्ति का जप अगर ढीला भी चल रहा है ना, तो भी उसके अंदर से ये लस्ट क्रिएट नहीं होगी। हाँ, ये लस्ट क्रिएट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? फर्मेंटिंग एजेंट ही नहीं डाल रहे हैं ना आप अंदर दूध में। दूध में अगर नींबू ही नहीं डाले हैं या कोई दही नहीं डालो तो प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, तो दूध बिगड़ने वाला नहीं है अपने आप। और दूध को गर्म करते रहना चाहिए रेगुलरली, वो जब से हमको करना चाहिए। हाँ, आदि रस कृष्ण प्रेम जो है हमारे हृदय में, ये अभी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन फर्मेंटिंग स्टेज में है वो एकदम, उसको हम लोग ने ये कवर कर लिया है तो ये लस्ट बनता है। ये विकुक्षी ने ये जो गलती की वो गलती हम भी करते हैं, सिर्फ वही करता है ऐसा नहीं है, हम बार बार करते हैं। और हमें ये बार बार सोचना समझना चाहिए कि हमें ये गलती नहीं करना है। अच्छा, ऐसी कई गलतियों के सिद्धांतों को जब देखा जाता है तो फिर खाने में कुछ लोग का आर्ग्यूमेंट रखता है क्या खाना चाहिए। जैसे यहां पे तो बताया मांस खा सकते हैं, देखो ये लोग खा रहे कर रहे करके, हम लोग क्यों नहीं खा सकते? कहां पे शास्त्र में लिखा है ये क्वेश्चन आता है। शास्त्र में कहां लिखा है कि शिला प्रभुपाद जी ने जो चार नियम बताए उसका पालन करना चाहिए? श्लोकों में। हाँ, तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी ने लिखा है। एक बाहर का व्यक्ति ये आर्ग्यूमेंट करेगा, हम लोग तो तात्पर्य में जो लिखा है हमारे लिए तो वही भागवत है। शायद श्लोक हमारे लिए भागवत नहीं है लेकिन तात्पर्य जो है वो हमारा पूर्ण भागवत है। हमें वो प्रश्न तो नहीं होगा, शिला प्रभुपाद जी ने लिखा है चार नियम पालन तो मैं तो करूंगा ही, लेकिन बाहर वाले ज्ञानी लोग, कर्मी लोग, हाँ भोगी लोग जिनको ये सब गलत नियमों को करना है, उन लोगों का ये आर्ग्यूमेंट रहता कि कहां शास्त्र में बताइए, भगवद गीता भागवतम आप इन दोनों का ग्रंथ का आधार ले रहे, बताइए इन दोनों में कहां लिखा है कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, या और चौथा क्या है अपना, जुआ मांसाहार इंटॉक्सिकेशन, नशा पान नहीं करना चाहिए, ये चार नियम कहां लिखा है भगवद गीता भागवतम में? कौन बताएगा? पहले स्कंद में, श्लोक में कहां लिखा है? प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बहुत बार लिखा है, श्लोक के फॉर्म में कहां पे ये बताया कि ये चार नियम आवश्यक है? क्या श्लोक है? मैं श्लोक एग्जैक्ट संस्कृत मत बोलो बट उसका श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में, आपकी बात सही है, दो जगह पे ये है, एक आप जो बता रहे हैं और एक जगह में परीक्षित महाराज जब कली को पकड़ते हैं, हाँ तो जो वार्तालाप है उस वार्तालाप में धर्म के चार स्तंभ बताए। कौन से चार स्तंभ बताए? TSDS, हाँ तप शौचम दया सत्यम, हाँ तप शौचम दया सत्यम, ये चार क्या है? धर्म के चार स्तंभ है। अगर ये चार स्तंभ अगर मजबूत नहीं है और चारों एक अपने अपने कॉर्नर में नहीं है तो धर्म का प्रश्न ही नहीं उठता है। और जब धर्म का ही कोई प्रश्न नहीं है तो आध्यात्मिकता तो धर्म के परे की चीज है, प्रश्न ही नहीं उठता है अगर ये चार चीजें नहीं है तो। इसी चार का डेरिवेटिव्स या डिराइव्ड जब उससे निकाला है, हाँ वो चार नियम है। मूल प्रिंसिपल तो और भी खतरनाक है। मूल प्रिंसिपल जो ये चार है ना, ये तो ये जो साधारण जो वर्णन हम लोग करते हैं ना उससे भी ऊपर की चीज है, और बहुत ही गंभीरता से सटल फॉर्म में, सूक्ष्म फॉर्म में देखे तो बहुत डेंजरस है। हम में से कहीं कितने लोग हर पल इन चार नियमों को तोड़ते रहते हैं। सत्यम, हाँ सत्यम का कौन सा चार नियम लग रहा है, कौन सा रिलेशन है? जुआ, वेरी गुड, जुआ बना वाली प्रभु जो, जैसे जुआ हम खेलते हैं तो हम सत्यम नियम को तोड़ रहे हैं। जुआ खेलने वाला व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोलेगा, आपने हमेशा देखा रहेगा। तो मूल सिद्धांत क्या है? सत्य बोलना है, असत्य नहीं बोलना है। लेकिन उसका डिराइव्ड, क्योंकि जुआ खेलने से ये हो रहा है इसलिए शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि जुआ मत खेलो। लेकिन जुआ मत खेलो के साथ में उसका मूल सिद्धांत समझना चाहिए कि सत्य बोलना है, असत्य नहीं बोलना है। असत्य बोले तो धर्म का एक स्तंभ आपका हिलडुल रहा है, वो हट रहा है, हटेगा वैसे ही पहला एक नियम तोड़ रहे, चार नियम में से एक नियम तोड़ रहे। अब हम जिंदगी में कई कितनी बार असत्य बोलते रहते, बात बात में अभी तो असत्य बोलना एक लोगों के लिए फैशन हो चुकी है। हाँ, क्योंकि हम भी उसी जगत से आए हैं तो हमारा भी कंडीशनिंग होता है, 10 15 25 20 सालों के बाद भी हम भी बार बार उसका आधार लेने का कोशिश करते हैं, हमको लगता है कि नहीं इसी से मेरा विजय होगा। वहां पे हम ये नियम को तोड़ रहे हैं। हाँ, कौन सा? जुआ खेलने वाले नियम को। जभी जभी असत्य बोला मतलब नियम तोड़ रहे हैं एक। अच्छा, उसके बाद क्या है? तपह। तपह का क्या करस्पॉन्डिंग है यहां पे? कौन सा नियम है? नशा। जो जो व्यक्ति तपस्वी है उसके लिए तो शरीर को जो आवश्यकता है वही पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त से ज्यादा नहीं, पर्याप्त से कम नहीं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं जरूरत से ज्यादा नहीं, जरूरत से कम नहीं, पर्याप्त मात्रा में जो आवश्यक है इस शरीर को चलाने के लिए, ताकि यह शरीर जप तप कीर्तन भजन कर सके, इसके लिए उतना ही मात्रा में जो ग्रहण करता है वो तपस्वी है, या तप कर रहा है, या वो नियम को नहीं तोड़ रहा है, उसका जो स्तंभ है वो मजबूत है। हम जैसे ही इंटॉक्सिकेशन लेते हैं, जो इस्कॉन के भक्त नहीं लेते, लेकिन कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हमको शिला प्रभुपाद जी ने बताया चाय ले सकते हैं, कौन सा? वो हर्बल टी। तो वैसे हर्बल टी एक्चुअली शिला प्रभुपाद जी ने जो प्रपोज किया था वो उन लोगों के लिए जो बाहर वाले जो चाय को सडनली ऐसा अचानक नहीं छोड़ पा रहे हैं, उन लोगों के लिए एक अल्टरनेटिव धीरे 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 छोड़ने के लिए दिया। जैसे ये मांसाहार का, जो मांसाहार से एडिक्टेड है, जो छोड़ नहीं पा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये कोई कली संतरण उपनिषद या कभी कोई मार्कंडेय पुराण या कभी श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक उन लोगों के लिए बता रहा है कि भाई कभी कभार अमावस्या के दिन काली देवी को अर्पित करते हुए तुम थोड़ा सा मांस इस तरह से ले सकते हो। इसके पीछे का पर्पस क्या है? प्योरिफिकेशन, उसका शुद्धिकरण, उसको उस लेवल से धीरे 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 ऊपर लाना है। अब तो इस समय तो उसको जो मांसाहार सतत रोज कर रहा है उसको हरिनाम और ये भागवत कथा का कोई मतलब ही नहीं समझेगा। हाँ, जैसे नर्सरी के बालक को सीधा एसएससी का ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है, बुद्धिशाली है तो क्या हुआ, लेकिन उसको नहीं समझेगा। हाँ, तो उस नियम को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे कुछ अल्टरनेटिव दिया, तो हम लोग क्या फिर 15-20-25-30 साल तक उस अल्टरनेटिव को पकड़ के उससे आसक्त रहते हैं, तो वो एक्चुअली गलत है। हम लोगों को अभी धीरे 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 वो भी नहीं, हमको हर्बल टी से हमें क्या लेना देना, बॉडी का कहां आवश्यकता है, ना तो वो मेडिसिन है ना तो वो रेगुलर फूड है। तो वैसे नियमों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम लोग कंपनियों में देखते हैं कि कंपनी में कोई व्यक्ति ट्रैवलिंग में कहीं जाता है ना, तो ट्रैवलिंग का 500 रुपया खर्चा करेगा ना, तो कंपनी में आके 800-1000 रुपए का वाउचर बना के प्रस्तुत करके 300 रुपया जेब में रखता है। गलत वाउचर, वाउचर को इन्फ्लेट करना, ज्यादा थोड़ा पैसा बनाना, कहेगा इतना खर्चा हो गया, ये हो गया, गलत वाउचरों को, सिद्धांतों को। यहां पे सत्यम का नियम तोड़ रहा है व्यक्ति, यहां पे वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल तोड़ रहा है, भले ना वो फिर भक्त है या अभक्त है, उससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे भक्त वो मंदिर में करे चाहे अभक्त कंपनी में करे, सत्यम का नियम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स वहां पे तोड़ता है। ठीक उसी तरह आगे चलिए, TSDS, सौचम। सौचम से क्या है? क्लीनलीनेस, व्यभिचार। व्यभिचारी व्यक्ति सौचम, हाँ, क्लीनलीनेस, हाँ, स्वच्छता, उसकी आंतरिक स्वच्छता का क्वेश्चन मार्क है, खतरा है। जो व्यभिचार कर रहा है मतलब उसका आंतरिक स्वच्छता नहीं है, खतरा है। वो उसका धर्म का वो स्तंभ टूट रहा है, वो नियम को तोड़ रहा है। और व्यभिचार का अर्थ शिला प्रभुपाद जी और शास्त्र कहते हैं कि केवल यही नहीं है कि परस्त्री गमन, परस्त्री दर्शन, उस भावना में यह भी व्यभिचार है। वहां भी हम चौथा नियम, ये वाला नियम तोड़ रहे हैं, हमारा पतन हो रहा है। भले वो शायद हो सकता है एक सेकंड के लिए हो रहा है, या एक घंटे के लिए हो रहा है, या एक दिन के लिए हो रहा है। विशेष करके बॉलीवुड हॉलीवुड सिनेमा देखने वाले एक्चुअली ये नियम को तोड़ रहे हैं। हाँ, चाहे फिर वो 25 साल पुराना भक्त हो, चाहे मंदिर का हो, चाहे बार का हो, वो नियम को वो तोड़ रहा है उस समय। अगर कोई सुंदर माता जी दिखी और मंदिर निवासित भक्त की दृष्टि जा रही है, उसकी भावना उधर है, तो वो उस नियम को तोड़ रहा है। वैसे वर्षा माता जी अगर प्रभु जी को इस तरह दिख रहे तो वो उस नियम को तोड़ रही है। हम उसी प्रैक्टिस में, ये विकुक्सी हमारे सबके हृदय में है एक्चुअली, जब तक ये विकुक्षी हमारे सबके हृदय में है, ये चार नियमों को हम तोड़ते हैं। अगर बारीकाई से सटल फॉर्म में अगर देखें, हाँ, अगर गौर से और ऑनेस्टली अगर देखें ना, तो हम लोग इस चार नियमों को बार बार तोड़ते जा रहे हैं। और फिर भी कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छे भक्त हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं। एक्चुअली हम भक्त है ही नहीं, हम लोग सोच भी नहीं सकते। ये अरसिला प्रभुपाद जी कहते हैं ये चार नियम मनुष्यों के लिए, भक्तों के लिए नहीं। भक्तों को तो इन चार नियमों के परे और बहुत सारे सिद्धांत नियम वगैरह है, पर दुखे दुखी। कल वो बता रहे थे ना माधवानंद प्रभु, हाँ, कि वो दूसरों को भगवत धाम भेजना चाहते हैं और उन सबका पाप अपने सर पे लेना चाहते हैं, वो वास्तव में कहा जा सकता है कि भक्त है। जैसे प्रहलाद महाराज है या वासुदेव प्रभु जी है या ऐसे इन इन स्तर के लोगों को। जब प्योर फॉर्म में कुछ कार्य किया जाता है भगवान की संतुष्टि के लिए, जैसे प्रसाद, प्रसाद शब्द का क्या अर्थ है? संस्कृत शब्द है, वास्तव में प्रसाद का क्या अर्थ है? मर्सी, कृपा, एक ये है। दूसरा क्या अर्थ है? प्रभु का साक्षात दर्शन, क्योंकि प्रसाद कृष्ण से अभिन्न है। हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो एक्चुअली हम कृष्ण को प्राप्त कर रहे हैं एक्चुअल। और एक इसका मीनिंग है, संस्कृत शब्द जो प्रसाद है वो डिक्शनरी में दो अर्थ देती है प्रसाद का, एक मर्सी जो आपने बताया और दूसरा संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। प्रसाद मीन्स सेटिस्फैक्शन, प्रसाद मीन्स मर्सी। फिर भले हम ये प्रसादे पूरे आशा या वो प्रसादे पूरे आशा, लेकिन ये प्रसादे पूरे आशा चलेगा, संतुष्टि होती है, सेटिस्फैक्शन। तो कौन से प्रसाद से संतुष्टि होगी जो प्योर फॉर्म में ऑफर किया गया है शिला प्रभुपाद जी के बताए हुए नियम के अनुसार भगवान को? मर्सी, प्रसाद प्योर फॉर्म में ऑफर करना है। कैसे ऑफर करना है? बनाने वाले को स्नान करके, हाँ, स्वच्छ वस्त्र पहन के केवल भगवान के लिए ही बनाना है, उस भाव में बनाना है। हाँ, जितना प्योर रहेगा ना प्रसाद उतना ज्यादा पोटेंट रहेगा, और जितना पोटेंट रहेगा उतनी ही ज्यादा लस्ट जो हमारी है वो निकल जाएगी। तो हमें यह सोचना चाहिए कि हम क्यों ना इन सिद्धांतों का अच्छी तरह से वास्तव में पालन करें और प्योर फॉर्म में प्रसाद लें। लेकिन जभी जभी ये प्योर फॉर्म में प्रसाद नहीं लिया जाता है तो क्या होता है, ये भी शिला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में यहां लिखा है। हमारे मंदिरों में उन्होंने लिखा है, जो लोग अर्च विग्रह की पूजा करते हैं उन्हें इसे ठीक से जान लेना चाहिए, जिससे वे अर्च विग्रह पूजा में अपराध करने से बचे रहे। हाँ, जब जब हम अपना भावना, खाने वाला भावना का भोग कृष्ण को लगाए, हाँ, या उसमें जिसमें हमारी बुद्धि आ गई, ऐसे एकाध दो बार तीन बार हो गया तो भगवान इतने दयालु के माफ कर देंगे, हाँ, वो क्षमा कर देंगे। लेकिन जो पुजारी है या जो वो उसका नियंत्रण करने वाला व्यक्ति जिसको ये सेवा दी गई है, अगर उसी का बार बार यही चेतना रहेगा, बार बार यही होता रहेगा उसके साथ, चाहे घर में हमारे लोगों के बीच हो चाहे मंदिर में हो, तो उसका परिणाम अपराध, और इस अपराध का साइड इफेक्ट, परिणाम लस्ट, काम। एकदम क्लियरली समझना चाहिए, वास्तव सेवा है लेकिन इसका साइड इफेक्ट या साइड प्रोडक्ट क्या है? लस्ट क्रिएट होगी हृदय में, बार बार उसी भावना के अपराध के साथ किया जाता है। तो इसीलिए कई बार हमने देखा सुना है कुछ लोग, एक जन मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि दक्षिण साउथ अफ्रीका का एक पुजारी, बरसों पुराना पुजारी, ये सब गलत कार्य व्यभिचार के संबंध में कर रहा है। जो पुजारी है बरसों से, कैसे ये कर रहा है? ये सब बेसिक रीजंस है उसके लिए। रोज का कुकिंग करना, उसके लिए ये आरती करना एक रिचुअल बन चुका है, एक रिचुअल बन चुका है उसके लिए। इसकी कोई महत्व ही नहीं है, बस उसको कुछ एक ड्यूटी है, उधर रुकना है, उधर कुछ कमाना है, उधर उसकी कुछ टिकने की भावना से वो कर रहा है। इतना अपराध करते जा रहा है, इतना अपराध करके बाई प्रोडक्ट भी पैदा हो रहा है साथ साथ में। हाँ, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना कि गार्डनिंग अगर ठीक से नहीं किया तो बाजू में से सब बाई प्रोडक्ट निकलते रहेंगे। ये बाई प्रोडक्ट लस्ट है, और लस्ट हमेशा प्रोमिनेंट फैक्टर होता है इसका बाई प्रोडक्ट में, और दुश्मन भी है सबसे बड़ा। लेकिन अगर हम ये सब अच्छी तरह से पालन करें, शुद्ध प्रसाद रखें, तो इतना पोटेंसी है, इतना पोटेंसी है कि लष्ट खत्म करता है। इसको अगर किसी को दिया जाए ना, जो जप कीर्तन नहीं करता है, उसको भी दिया जाए तो उसका भी लष्ट को खत्म करता है, उसकी भी सुकृति बढ़ाता है, उसको भी भक्त बनाता है, उसी को उसको भी भगवत धाम भेज सकता है और वो एक्सपांडेबल है। हा? उसका विस्तार होता है। कितना विस्तार होता है कोई कल्पना कर सकते हैं? अनंत विस्तार होता है। जैसे आपने अभी अभी बताया ना, बिकॉज ये कृष्ण है तो कृष्ण प्रसाद, क्योंकि कृष्ण है ये अनंत है, इसका विस्तार होता है, अनंत विस्तार होता है। ये भावना, ये श्रद्धा, ये विश्वास हम भक्तों के हृदय में होना चाहिए कि प्रसाद, महाप्रसाद जो कृष्ण का है वो अनलिमिटेड है। एक बार की सत्य घटना है संत तुकाराम महाराज के जीवन की। संत तुकाराम महाराज आप जानते हैं कि गृहस्थ भक्त थे, पत्नी और दो बच्चे थे, और भगवान विट्ठल जी के चरण कमलों में इनका इतना चेतना मन लगा हुआ था कि उनको बाहर के दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता था। हाँ, गृहस्थ थे लेकिन गृहस्थ धर्म के बारे में कुछ जानते समझते सोचते ही नहीं थे। क्यों? ऐसा नहीं है कि वो आडंबरी, सो कॉल्ड गृहस्थ, डिटैच, सब कुछ छोड़ के वृंदावन जाता है और बोलता है अब मैं वानप्रस्थी और गृहस्थी या सन्यासी हो गया, ऐसा हूं, अभी मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं। और बाद में पता चला कि लैंड खरीद खरीद के बेच रहा है, पैसा कमा रहा है, दो दो शादियां कर रहा है, करवा रहा है लालचों में, ये सब वो टाइप का गृहस्थ नहीं। वो सब वो लेवल नहीं, ये तुकाराम के लेवल, वो जो प्रश्न का लष्ट का था ना, कृष्ण में तो मेरे अंश में रहेगा, वो टाइप का है। उस तुकाराम के गृहस्थी को समझना बोले तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है हमारे लिए। तो तुकाराम महाराज कभी नौकरी करते ही नहीं, कोई धंधा करते ही नहीं, कोई खेती करते ही नहीं, बस पूरा दिन वो श्लोकों के ऊपर श्लोक लिख के जाते हैं अपने विठोबा के ऊपर, संग्रह करते जा रहे, भक्ति करते जा रहे, प्रचार करते जा रहे, भजन करते जा रहे। उसकी पत्नी उनको डांटती है, कान पे उनके शब्द जाते हैं लेकिन कोई असर ही नहीं हो रही हृदय में, बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में खाना पीना ही नहीं है। एक बार क्या हुआ, उनके घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं था, बच्चों के लिए 100 ग्राम चावल था, 50 ग्राम दाल थी, बस। एग्जैक्ट ग्राम शब्द वहां नहीं लिखा लेकिन मैं एक अंदाज बता रहा हूं, ये थोड़े से चावल थोड़ी सी दाल, हार्डली एक व्यक्ति का भोजन था। घर में चार लोग हैं, दो बच्चे, माता पिता। और उसमें क्या हुआ, भीमा शंकर की यात्रा उस गांव से जा रही थी, तुकाराम के गांव से, तो एक गुरु अपने 100 शिष्यों के साथ वहां से गुजर रहे थे। तो पहले के जमाने में वॉकिंग यात्रा ही होती थी ना, तो वो चलते चलते जा रहे थे, तो देहू गांव में जब आए ना, तो उन्होंने किसी से पूछा कि हमारे लिए इस गांव में प्रसाद की कोई व्यवस्था कर सकता है, हम लोग यहां नदी में नहाएंगे, यहां रुकेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर भीमा शंकर को आगे निकलेंगे। तो किसी व्यक्ति को मजाक करने की आदत रहेगी, जिसको खुद को सेवा नहीं करना है ना, वो किसी दूसरे ही व्यक्ति का नाम देगा और उसको बोलेगा, और खास करके वो देखेगा कि किसको मैं परेशान करूं। हाँ, वो कर सकता है, उसके पास जाइए। वो दुर्योधन कैसा बोलता है, अरे भाई आप दुर्वासा मुनि, आप वो पांडवों के पास जाइए। हाँ, ये नरसिंह महाराज के जीवन में भी ऐसा हुआ, कोई उसको बोला हुंडी देना है तो बोलते वो नरसिंह मेहता हुंडी देगा, जिसके पास एक रुपया नहीं है, हिसाब किताब नहीं आता, वो कहां से हुंडी लिख के देंगे आपको, लेकिन बोलते हैं वो हुंडी लिख के देंगे। ऐसे उन्होंने बोला कि अरे गांव में एक धनी व्यक्ति है जो बहुत पैसा है उसके पास और बहुत सेवा करता है साधुओं की, तुकाराम के घर जाइए, वहां आपको 100 जनों का प्रसाद आराम से मिलेगा। तो भीमा शंकर यात्रा वाले जो गुरु थे, शिष्य को बोला जाओ तुकाराम महाराज को बोलो हम स्नान करके आ रहे हैं, 101 जन का प्रसाद लेंगे। तो वो आए तुकाराम महाराज के पास, हाथ जोड़ के बोले मैं, हमने आपका नाम सुना है गांव में, आप तो बहुत दयालु है, प्रसाद बनाइए हमारे लिए 101 जनों का। तुकाराम महाराज बोलते हैं यस यस, आप स्नान करके आइए, मैं आपके सबके लिए प्रसाद तैयार रखता हूं। कुछ नहीं, उसको पता ही नहीं, एक्चुअली एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस के परे है ये व्यक्ति। कोई सेवा दिया, अरे मौका मिला ब्राह्मण की सेवा करने का, आइए। और पत्नी को बुला के बोलते हैं कि 101 जन का चलो प्रसाद तैयार करें। अब पत्नी टोटल मटीरियल प्लेटफॉर्म पे थी, भौतिक स्तर पे, गाली देने से शुरू करती है। मराठी में गाली देती है, भेड़िया तुझा काड़िया ये नारका है। अरे पागल, तेरा काला आदमी वो विठ्ठल आने वाला है क्या ये सब करने के लिए? हाँ, कई कितने दिन से भजन कर रहा है तो बुला तेरे काले को और उसको ही बोल करने के लिए। ऐसे गाली देती है, उसको दबाती है, उसको बोलते है कि पागलपन तू क्या कर रहा है, जब मेरे बच्चे के लिए नहीं है, मैं रोज रोज रोती हूं, आज मुझे ये नहीं मालूम कि दो बच्चों को खिलाऊं, आपको खिलाऊं, और कुछ बचने मेरे लिए तो नहीं बचने वाला, लेकिन आपको खिलाऊं इसको खिलाऊं मैं कंफ्यूज हूं, और तुमको कुछ समझ नहीं रहा है और तुम बोलते 101 का प्रसाद बनाइए। लेकिन विट्ठल जी, अरे अपने तुकाराम जी फिर भी नहीं सोच रहे, वो सुन रहे हैं लेकिन शब्दों का असर नहीं है। विश्वास कैसी चीज होती है ना, इसका ये प्रमाण है। एक्चुअली हम लोग को अपने विश्वास का चेकिंग करना है ना, तो ये पैरामीटर्स है कि ऐसा है क्या हमारे मन में प्रसाद का विश्वास, क्या हम कर सकते हैं ऐसा कुछ। तो तुकाराम जी बोले ठीक है हम दोनों चलो कुकिंग करेंगे। अभी 100 ग्राम चावल 50 ग्राम दाल का दोनों ने कुकिंग किया। तुकाराम जी प्लेट में लेके तुलसी पत्र डाल के विट्ठल जी के विग्रह के सामने अपने घर में ऑफरिंग किया। ऑफरिंग करके घंटी बजा के हो गया 10-15 मिनट के बाद, ले लिया प्रसाद, अपनी पत्नी को बुलाया, दो बर्तन लाओ बड़े। बोले बड़े इतने के लिए, बड़े बर्तन की क्या हो सकता है, अरे भाई तुम लाओ। तो बोला ऐसा, वो तो गाली देते देते काम कर रही थी, ना विश्वास है ना कुछ करना है, लेकिन क्या करे अभी पागल पति के साथ पाला पड़े है तो क्या करेगी बेचारी। और पुराने समय में क्या पतिव्रता स्त्री रहती थी, हाँ वो कल्चर थोड़ा अलग था। आज की पत्नी रहती तो एक झापट मार के भाग जाती थी। बोले ये पागल हो गया, इसका कोई अभी कुछ नहीं हो सकता है, ये मरवाएगा। लेकिन वो तो दो बकेट लेके दे दिया, एक बकेट में उसने 100 ग्राम चावल डाला, एक बकेट में उसने 50 ग्राम दाल डाली। अच्छा वो लोग नहा धो के आए ना, तो सबको दो लाइन में बिठा दिया, बोले बैठ जाओ प्रसाद के लिए। अब पत्नी को बुला रहे, तुम दाल डालो मैं चावल डालती चावल डालूंगा आगे, मैं पहला चावल डाल रहा हूं और तुम पीछे से डाल दी जाओ। अब वो तो सोच ही नहीं पा रही है। सोचिए अगर आपको कोई ऐसा बड़ा बकेट में बॉटम में दाल दिखे और 100 जन बैठे और आपको कोई बोल दे, हम लोग क्या करेंगे? तुरंत ही अपना बौद्धिक जो है भौतिक स्तर का जो बुद्धि है उसमें लगा के बोलेंगे अरे पागल हो गया लगता है, रख के भाग जाएंगे, हो सकता है उसको झापट मारे, क्या करेंगे पता नहीं। क्योंकि हम लोग का भौतिक स्तर की भावना अविश्वास ये होता है। अब उनका स्तर देखिए, उन्होंने सचमुच एक्चुअली एक चम्मच राइस निकाल के पहले वाले को दिया, फिर दूसरे के पास गए दूसरा चम्मच राइस निकाल के उसको दिया, फिर तीसरे के पास गए तीसरा चम्मच राइस निकाल के दिया, और पत्नी को पीछे बोलते दाल देते जाओ इसी तरह। चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां बारहवां हर एक को एक एक चम्मच राइस देते जा रहे देते जा रहे देते जा रहे, और ये पीछे से देख रही है ये क्या हो रहा है चमत्कार, ये देते जा रही है देते जा रहे। 101 जन को दे दिया और फिर बकेट में उतना ही राइस था जितना पहले था, दाल डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उतनी ही दाल थी। सेकंड सर्विंग थर्ड सर्विंग जितना सर्विंग करना था तुकाराम महाराज ने पूरा सर्विंग किया, सब लोग संतुष्ट हुए। ये प्रसाद है पूरे सर्व आशा, संतुष्टि शब्द जो है ना संस्कृत ट्रांसलेशन, सब लोग संतुष्ट हुए उस प्रसाद से और फिर सब लोग धन्यवाद प्रकट करके चले गए। एक्सपांडेबल प्रसाद, पोटेंसी होती है। यह अनुभव किसी ने किया है इस्कॉन में? एक्सपांडेबल है बनामाली प्रभु ने निश्चित ही अनुभव किया है। कई बार इस्कॉन के लीडर्स लोगों ने अनुभव किया है, प्रसाद बनाते हैं 2000 का और आ जाते हैं 5000 फेस्टिवल में, सबको पूरा होता है। किसको पूरा नहीं होता है, किसके हृदय में खट वो क्लेश रहता है कि मेरे को नहीं मिला मेरे को ठीक से नहीं मिला, जिसको उसकी पोटेंसी नहीं समझ रही है, जिसको उसकी संतुष्टि नहीं समझ रही है। हाँ जैसे दूध, हर रोज दूध पीने वाला कोई व्यक्ति है, समझो अच्छा सात्विक ब्राह्मण दूध पीने वाला व्यक्ति है, और उसको एक ग्लास दूध दे दो तो मस्त बोलेगा अरे संतुष्ट हो गया बहुत मजा आया। लेकिन रोज एक ग्लास दारू पीने वाला व्यक्ति है, हाँ उसको अगर आके आप एक ग्लास दूध दो तो उसको संतुष्टि होगी? नहीं होगी। इसमें दूध का क्या गलती है? हाँ इसमें देने वाले की क्या गलती है? गलती तुम्हारे हृदय में है। हाँ तो जो इस्कॉन प्रसाद प्राप्त करने के बाद अगर संतुष्ट नहीं है ना, तो ना प्रसाद का गलती है ना देने वाले का गलती है, गलती हमारे हृदय में है। हम अकस्टम्ब होते हैं, हम कंडीशन होते हैं, बद्ध अवस्था में होते हैं भोग खाने के लिए, ज्यादा खाने के लिए। हाँ तृप्ति हमारे जीवा को हो ही नहीं रही है क्योंकि हम भोगों में तृप्ति ढूंढते हैं, जबकि वास्तव में प्रसाद में तृप्ति है, भोगों में तृप्ति नहीं है। थोड़ा सा लीजिए हो जाएगा। 2004 की एक बार मैंने श्रीनाथ जी की यात्रा निकाली थी, माधवेंद्रपुरी के श्री गोपाल जी, हमने राजभोग प्रसाद बुकिंग किया था, 50 हम लोग यात्रा में थे, एक पूरी बड़ी बस लेके गए थे 50 जनों के लिए। पुजारियों को पहले से पेमेंट एडवांस किया था, ₹40 पर प्लेट के हिसाब से 50 जन का, और वो राजभोग प्रसाद लाने वाला था। अब यहां भी मंदिर में आपने अगर किसी ने राजभोग लिया है तो आप लोग को गृहस्थों को पता रहेगा, कुछ 1,500-2,000 रुपया देने से हम बुकिंग करते हैं, तो प्रसाद जो आता है वो पहले शुरुआत में दिखता है कम है, लेकिन 10-15 लोग आराम से पेट भर के खाते हैं, फिर भी बचता है। लेकिन उतनी ही क्वांटिटी में आप आपके घर में बनाइए, देखिए 10-15 जन को पूरा नहीं होगा, ये चैलेंज है, ये हमने अनुभव किया है। अभी थोड़े दिन 3-4 महीने पहले हुआ, कुंती भोज प्रभु ने यहाँ कुछ प्रसाद बुक किया था उनकी पहली एक ऑनलाइन इनकम से, तो उनको वो घर पे गए तो उनके घर में भी 4-5 है ना, उनको लगा ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, उनको थोड़ा तो विश्वास है, तो उन्होंने आधा मेरे घर पे भेजा। तो वो टोटल मंदिर वाले जानते हैं वो टोटल प्रसाद कितने लोग के लिए लंच है, 4 और हम लोग 5, तो 9-10 हो गया ना। लेकिन हम लोग ने जब पांचों लोग ने ले लिया ना लंच पूरा, घर में बनाया नहीं था क्योंकि हमको पहले से पता था कुंती भोज प्रभु ने बताया था कि प्रसाद मिलेगा, उसके बाद बहुत बचा। और फिर हमने वो श्रीराम श्रीपति है ना जो लीला मंजरी माता जी और उनके श्रीवास ठाकुर प्रभु, उनके घर में भेजा, तो वो लोग ने भी सबने खाया, बोले हमने सबने खाया, संतुष्टि हो गई। तो इनिशियली सोचा था 8-10 दिन का, एक्चुअली 15 लोगों ने मिलकर खाया और सबको संतुष्टि हुई, क्योंकि राधा गिरिधारी से आया था, महाप्रसाद था, इधर के किचन में बना था, हा? उस कॉन्सियसनेस उस चेतना में बनी थी। ठीक श्रीनाथ जी में हमारे साथ यही घटना घटित हुई, 50 दिन का जब प्रसाद आया ना वो हार्डली मुझे लगा कि ये 20 आदमी का है, इतना ही आया था जितना आप राजभोग दे रहे हैं ना उतना ही आया था। अब मैं ऐसी दुविधा में है कि उसको उस पुजारी को ना डांट सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो कहेगा अरे हो जाएगा। और श्रीनाथ जी माधवेंद्रपुरी के गोपाल जी का महाप्रसाद मिला है, इसमें शंका भी कैसे करूं मैं, लेकिन सामने 50 लोग बैठे थे। अब मेरी मम्मी ने तो सचमुच मेरे को बोला कि ये कम पड़ेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं बोला अभी हम लोग अपनी बुद्धि लगाने जाएंगे ना तो प्रॉब्लम होने वाला है, अब बुद्धि लगाए बिना पुराने विचारों को श्रद्धा के विश्वास के ऊपर कैसे भी करके डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ, जो होगा वो देखा जाएगा, कोई असंतुष्ट रहेगा तो बाद में उसकी कुछ और व्यवस्था करेंगे। और सचमुच मानिए इतना प्रसाद सब लोग ने लिया, बाद में एंड में लोग खा नहीं सक रहे थे, बचा हम लोग गाय को खिलाने गए सब लोग मिलके बचा हुआ प्रसाद। सीरियसली वहां पे रियली विश्वास नहीं था, लेकिन पुराने सिद्धांतों को याद करके हमने सोचा चलो एटलीस्ट ट्राई करो, जाओ अभी जो होगा, परिस्थिति सामने है, सहन तो करना ही पड़ेगा, जो होगा सो होगा। सो प्योर प्रसाद वेरी पावरफुल एक्सपांडेबल मर्सी संतुष्टि लस्ट को खत्म करता है। अगर ये हम करेंगे तो निश्चित हमारे हृदय से काम वासना निकल सकती है। काम और लोभ ये दो कलयुग के खतरनाक शत्रु हो चुके हैं सबके लिए। हर एक व्यक्ति व्यभिचार की भावनाओं में ही जीता है, हर एक व्यक्ति कहीं से कितना ज्यादा धन बटोर लो वही सोचता है, गलत तरीके से तो गलत तरीके से, नियम तोड़ के तो नियम तोड़ के, बस बटोरूं बटोरूं, जमा करूं जमा करूं, संस्था का नाम लेके या प्रभुपाद जी का नाम लेके या और किसी तरीके से बस बटोरूं और मेरे लिए जमा करते जाऊं, ये सब भावना है ना बटोरने की, और ये सब मैं ही भोगूं, ये भावना से मुक्ति मिल सकती है अगर प्रसाद प्योर फॉर्म में मिले तो। वृंदावन अगर हम जाएं तो मन तो बहुत करता है कि वो बांके बिहारी के पास फर्स्ट क्लास रगड़ा पेटीज और वो क्या मिलता है पानी पूरी और खाएं मजा आ रही है, बट एक्चुअली में वही हमारा शत्रु है। जबकि राधा श्याम सुंदर का महाप्रसाद वहां के भक्त मर्सीफुली 5-5 रुपया 10-10 रुपये दौड़े में सुबह भी दोपहर को भी और शाम को सेल करते हैं। एक दोना भी 10 रुपए का लेता है, 3-4 पूरी रहती है थोड़ा सब्जी रहता है, दूसरा दोना खीर का रहता है, एक आधा हलवे का रहता है, एक आधा एक्चुअली सीरियस भक्तों को तो वो 2-3 दोना लेके ही खा लेना चाहिए। उसमें कितना देखिए सेविंग भी हो रही है पैसे की दृष्टि से, और क्योंकि वो प्योर राधा श्याम सुंदर का प्रसाद है, अगर श्रद्धा विश्वास के साथ लिया जाए ना तो संतुष्टि भी होगी और हृदय भी शुद्ध होगा, फिर गलत कार्य करने की इच्छा नहीं जागृत होगी, फिर यहां वहां गलत व्यभिचारों के लिए नजर डालने के लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम ये नहीं करते हैं तो हमारे हृदय में सब कलमश चलता रहता है। प्योरिटी इज द फोर्स, फिर वो प्रसादम की भी प्योर प्रसाद। जैसे मैंने सुना है कि हमारे साउथ के कोई आचार्य है, यू मस्ट बी नोइंग, मैं शायद भूल रहा हूं, बहुत बरसों पहले ये सुना था, रामानुजाचार्य शायद, इफ आई एम रॉन्ग यू करेक्ट मी। वो एक बार महाप्रसाद की पोटेंसी शिष्यों को समझाने के लिए उन्होंने अपना
मुख में जो प्रसाद था वो थोड़ा वो नदी में डाला और मछलियां वगैरह खाया और मछलियां सीधी भगवत धाम गई इमीडिएटली स्पॉट में, है ना। ये है रियल पोटेंसी है। शिला प्रभुपाद जी का देखिए, जो हाथों का उनके हाथों का बना हुआ प्रसाद खा रहे थे जो लोग, दो तीन साल में सब सन्यासी बनने लगे, जबकि उनका एक एक्सट्रीम एंड था व्यभिचारों में। हाँ, जबकि एक स्पिरिचुअल एक्सट्रीम एंड में वो थोड़े ही समय में कैसे चले गए सब लोग। प्योर प्रसाद मिल रहा था, 100% प्योर विद कंपैशन। प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले के हृदय में एक्चुअली दया बहुत होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए कि ये कृष्ण की कृपा में सबको भर भर के बांटू। डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जब भी कंजूसी करता है, कम देता है, नहीं देता है, उसको ज्यादा देता है, इसको कम देता है, ये सब एक्चुअली बकवास है। इसका मतलब हम कुछ सीखे समझे ही नहीं अभी तक, गई भैंस पानी में अभी तक का जितना सीखा समझा हुआ। डिस्ट्रीब्यूट करने वाले का हृदय में एकदम 100% ये प्रसाद एक्सपांड होगा जरूरत पड़ी तो। ये प्रसाद कृष्ण की कृपा है जो उसका हृदय शुद्ध करेगा। हाँ, ये प्रसाद इसको भगवत धाम लेके जाएगा, मुझे नहीं मिला तो भी चलेगा। लास्ट में मुझे अगर एक कण भी नहीं मिला तो मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन हाँ, हम एटलीस्ट ट्राई करें सबको बांटने की, वासुदेव दत्त के चरण कमलों में फॉलो करने का प्रयत्न तो शुरू करें। डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। हाँ, एक दिन एक भक्त जो यहाँ सेवा कर रहे थे मुझे आके बता रहे थे कि मेरे को डांट दिया, ये किया, प्रसाद कल से मत लेना हमारे मंदिर में। मेरे को बड़ा आश्चर्य लगता है कि हम इतने सालों के बाद क्यों ऐसा बार बार कर रहे हैं। इसीलिए मेरा ऐसा प्रवचन रिपीट चलता रहता है। ये शायद आपने पहले भी कभी बहुत बार सुना रहेगा, ऐसी ही सब बात है। बट रिपीटेशन इज नीडेड फॉर मी, फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ अस। मैं तो कहता हूं कि अभी जिसको सीरियस भगवत धाम जाने की इच्छा है ना, वो केवल भगवत गीता प्रभुपाद जी का, श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद जी का, चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद जी का, इन तीन ग्रंथों के अलावा कुछ करो ही मत, कुछ पढ़ो भी मत, कुछ देखो भी मत, कुछ करने की जरूरत नहीं। इसी को रिपीटेशन बार बार पढ़ते रहो, दो बार, दस बार, पच्चीस बार, पचास बार, अच्छी तरह से हर तात्पर्य और सिद्धांतों को समझो, अच्छी तरह से पालन करने का कोशिश करो। इवन प्रसाद में अगर आपको विश्वास इस जन्म में आ गया तो समझ लेना आपने इस जन्म को सार्थक कर लिया, हम लोगों ने सार्थक कर लिया, अचीव कर लिया अपना इस जन्म का कार्य। हाँ? जगन्नाथ जी का भात प्रसाद अगर पूरी का हमने विश्वास के साथ खा लिया तो इस जन्म का कार्य पूरा हो गया। अगला जन्म निश्चित मनुष्य का ही है और ऐसे ही इस्कॉन संस्था में मिलेगा और निश्चय भक्तों के बीच में मिलेगा, वहीं से हमारा कार्य शुरू होगा। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सेम स्पिरिचुअल लाइफ। ड्रेस बदल गया सिर्फ, है ना, कल मेरा ड्रेस दूसरा होने वाला है तो मेरा क्या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं बदलेगा, एक्सटेंशन तो बॉडी शायद बदलेगा, हो सकता है 20-25 साल के बाद हमारी बॉडी बदले, लेकिन एक्सटेंशन कंटिन्यू रहना चाहिए, वहां पे ब्रेक नहीं आना चाहिए। अगर लस्ट है तो ब्रेक आएगा, लस्ट को हम अपने प्रयत्नों से नहीं खत्म कर सकते, इम्पॉसिबल है, किसी ने नहीं किया है, केवल हरिदास ठाकुर जैसे महात्मा ने किया है, क्योंकि ये सिद्धांतों को वो समझते थे, उन्होंने हरिनाम और हरिप्रसाद का आश्रय लिया था। इसीलिए हम लोग उनके जैसे हरिनाम का आश्रय तो ज्यादा नहीं ले सकते, लेकिन उनसे भी कहीं ज्यादा मात्रा में हरिप्रसाद का आश्रय ले सकते हैं, ये हमारा क्वालिफिकेशन है। तो why not to just make it pure? टेंडेंसी वही, सिर्फ उसको थोड़ा शुद्ध करो, बस टेंडेंसी वही, 2 किलो खा रहे 5 किलो खाओ, नो प्रॉब्लम, हम डिफीट करेंगे उनको भी खाने पीने में। कितनी माल आप कर रहे थे, अरे हम इतनी बार खाएंगे, इधर तक खाएंगे, नो प्रॉब्लम, खाइए, बट प्योरिटी इज द फोर्स। शिला प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न, टीका, टिप्पण, एनी क्वेश्चन, कॉमेंट्स? यस, नहीं, वृंदावन से आप जो सामान लाके इधर ज्यादा प्राइस में बेच रहे हो वो नियम नहीं तोड़ रहे, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, कहीं से ला रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप उसको झूठ बोल के नहीं कर रहे हैं, आप बोलते हैं ये आइटम इतने की है, और वो क्योंकि कृष्ण की सेवा राधा गिरधारी मंदिर के लिए हो रहा है तो गलत नहीं है। बाहर जो हम लोग जैसे लोग बिजनेस करते हैं जिसमें बार बार झूठ बोलते हैं, किसी का कंस्ट्रक्शन का है, किसी का डायमंड का है, किसी का और कमोडिटीज का है, जो भी हो, इसमें हम लोग अनेक बार झूठ बोलते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी ने उसका उत्तर दिया है ना बिजनेसमैन को लिए, 50% इनकम कृष्णा को दे दो तो बात खत्म हो जाएगी। 50% कृष्णा को डायरेक्टली जाएगा और 50% परिवार वालों के पालन पोषण वगैरह में जाएगा। तो उन परिवार वालों की सबकी जिम्मेदारी के कृष्णा भजन कीर्तन सेवा करें तो वो भी प्योरीफाई हो जाएगा। लेकिन जानबूझ के बात बात में जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे भी झूठ बोलना तो सत्य नियम को तोड़ रहे हैं। जैसे मैंने वाउचर का उदाहरण दिया ना, अगर समझो मान लो मैं एक कंपनी में मैनेजर हूं, बड़ी कंपनी में, हाँ इंफोसिस में, और मुझे कंपनी तनख्वाह दे रही है महीने का मेरे काम करने का, 1,00,000 रुपया महीने तनख्वाह दे रही है, और मुझे कंपनी अपने कंपनी के काम से जिसकी तनख्वाह मुझे मिल चुकी है उस काम से समझो मुझे बेंगलोर भेज रही है, तो बेंगलोर आने जाने का खर्चा मुझे वो बोल रही है कि जो होगा आप कंपनी से लेने ले लेंगे, अगर वहां 10,000 खर्चा हुआ है उसको मैं अगर 15,000 बोल के ले रहा हूं तो वहां पे मैं सत्य का नियम भी तोड़ रहा हूं। वहां पे वो ऐसा सोचोगे 2,500 गिरधारी को दूंगा, 2,500 पॉकेट में डालूंगा, तो वहां नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी मेहनत का तो आपको दिया ही जा रहा है 1,00,000 रुपया, और वो काम उसी काम के लिए आपको तनख्वाह मिल गई, और उस काम के दरमियान जो खर्चा है वो कंपनी का है। इसमें आप क्यों नियम तोड़ के झूठ बोल के गलत वाउचर बनाते हो? प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? कॉन्शियसनेस हैबिट है ना, वो ऐसी बन जाती है, ऐसी बन जाती है ना कि जहां देखो फिर वो पैसा खाने की आदत उसको लग जाती है, फिर वो 5 पैसा 10 पैसा में भी नजर डालता है, फिर ट्रेन का टिकट लेगा रिटर्न सैटरडे को रिटर्न आएगा, और फिर संडे को बोलता है रिटर्न वापस यूज करूंगा, वहां पे भी उसकी वो दुष्ट मती जाती है 8 रुपए के लिए। इतना बड़ा पैसे वाला आदमी 8 रुपए के लिए इतनी चेतना खराब कर रहा है, इतना नियम तोड़ रहा है, आश्चर्य की बात नहीं है? केवल 8 रुपए के लिए, नॉनसेंस एक्चुअली। 8 रुपए का क्या कीमत है कि तुम सत्य का नियम तोड़ रहे हो, धर्म के स्तंभ को हिला रहे हो इतना सारा? व्हाट इज द यूज? 8 करोड़ है तो अभी भी फिर भी मानने में आएगा कि बद्ध अवस्था वाला व्यक्ति 8 करोड़ में लालच डाला 8 रुपए के लिए। लोग करते हैं 13 साल की उम्र हो गई फुल टिकट होती है तो 11 लिखेंगे। कितने रुपए के लिए? 100 रुपए के लिए अपना ईमान धर्म सब बेच दिया तुमने, धर्मों का स्तंभ को हिला दिया 100 रुपए के लिए केवल, जबकि 10-25 लाख का मालिक रहता है, 1 करोड़ का मालिक रहता है। तो वी हैव टू थिंक, मैं जिंदगी भर इधर इधर तक रोज 10 बार खाऊंगा ना तो भी खत्म नहीं होने वाला, मैं ये 8-10-50-100 रुपए की चोरी के लिए अपनी चेतना क्यों बनाए रखता हूं? वैसा ही व्यक्ति कोई ना कोई जन्म में जब भी मंदिर ज्वाइन करेगा उसकी वो वृत्ति उसको बहुत सताएगी, वो मंदिर में भी वाउचर मैनिपुलेट करने लगेगा, वो मंदिर में भी खाने लगेगा, और वो इतना डेंजरस हो जाएगा ना कि वो व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए लायक नहीं रहता है। वो वहां पे सत्य का नियम टूट रहा है। समटाइम्स आई स्पीक वेरी यू नो अनपैलेटेबल थिंग्स, कभी कभी एक ना कभी कभी मैं बहुत ही ऐसा थोड़ा लग रहा है गुस्से जैसा या कुछ ऐसा कड़क या कड़वा कड़वा बोल रहा हूं, बट इट इज एसेंशियल। लास्ट टाइम मैंने बहुत कड़वा कड़वा वो बोला था प्रवचनों में, तो बहुत लोगों ने फीडबैक मिले मुझे सबसे, लेकिन मैंने मन में क्या सोचा, शिला प्रभुपाद जी से उनके शिष्य द्वारा कोई फीडबैक मिलेगा ना उसको ही मैं सीरियस लूंगा। और आप बिलीव मी, मैं लास्ट संडे जब राधा रासबिहारी मंदिर गया था आई डिडंट नो एनीथिंग, सामने से भीमा प्रभु जी ने मुझे बुलाया, मैं तो पास हो रहा था मेरा ध्यान भी नहीं रहा, भीमा प्रभु जी ने बोला हरिबोल कम है, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से हम लोग वो मुझे जानते हैं क्योंकि मुझे प्रचार के लिए जलगांव वगैरह भी भेजते थे पहले, उनके साथ मैंने अनेक प्रचार की सेवा में उनके आदेश अनुसार किया है। तो बोला हरिबोल कम है, लेकिन 3-4 साल से हम मिले नहीं है इतना 1-to-1। उस दिन आए थे मैं जब प्रवचन तीखा तीखा बोल रहा था, इधर से पास हुए थे, बोला कम है, तो मैं हाथ जोड़ के गया, तो मैं समझ गया कि कुछ उस दिन का फीडबैक रहेगा। तो मुझे बोला कि दैट डे आई हर्ड यू सेइंग दिस पॉइंट्स, तो मैंने उसमें बताया कि मैंने ये 3 पॉइंट बताए थे लेक्चर में, और 1 पॉइंट मैंने नहीं बताया है, और लेक्चर रिकॉर्डेड रहता है तो आप सुन भी सकते हैं, वेबसाइट पे भी रहता है और मंदिर भी रिकॉर्ड करता है, तो वो पॉइंट मैंने बताया नहीं है। बट नहीं, समबडी टोल्ड मी यू स्पोक दैट ऑल्सो, क्रूस में बोट में भागवत कथा का। मैं बोला नहीं, मैंने उसके बारे में कुछ बोला नहीं क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कौन कर रहा है क्या कर रहा है, वो तो बाद में अभी उन्होंने जब बताया तब पता चला कि somebody is doing that। तो मैंने बोला नहीं, मैंने वो नहीं बताया, लेकिन वो सारी बातें उनको मैंने बताई तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इट इज टोटली रॉन्ग, मैंने जो बताया था, मैंने बताया ना उस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे बोला, इट इज टोटली रॉन्ग, यू डन अ गुड थिंग, अच्छा हुआ आपने सबको बताया और अथॉरिटी को भी बता दिया, और उन्होंने मेरे सामने ही उस व्यक्ति को बुलाया जिसने ये सब गलतियां की थी, उसको सामने ही बोला कि आप गलत कर रहे हो, आप स्टॉप कर दीजिए, ये सब बंद कर दीजिए, उनको समझाया। एंड देन ही टोल्ड मी कि आप क्यों हमेशा रेगुलर ज्यादा लेक्चर्स नहीं ले रहे। मैं बोला ये मेरे हाथ की बस की बात नहीं है, अगर भक्त लोग कहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा, वो सब आप लोगों के हाथ में है। आप जब भी आदेश देंगे, पॉसिबल रहेगा तो मैं हाँ कहूंगा, नहीं पॉसिबल रहेगा तो क्षमा मांग लूंगा। कई बार भक्त लोग मुझे कहते हैं नहीं रहता तो मैं ना कर देता हूं कि नहीं आज मुझे काम है, ये है वो है, लेकिन कई बार मैं स्वीकार कर लेता हूं तो कोशिश करूंगा। तो मुझे हुआ कि नहीं, दो लोगों के फीडबैक से मुझे चिंता नहीं है, शिला प्रभुपाद जी का फीडबैक मुझे भीमा प्रभु के द्वारा मिल गया है कि ठीक है, किसी को तो बताना रोकना पड़ेगा। तो ये सत्य का ऐसा है, किसी किसी को मुझे ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली बताना पड़ता रहता है बार बार वर्षों के अनुभव में कि डोंट मैनिपुलेट टेंपल मनी एंड वाउचर्स, व्हाट इज द यूज, व्हाई आर यू रिस्किंग योर स्पिरिचुअल लाइफ, ग्रेटेस्ट लॉस, सब कुछ छोड़ के तुम इधर आए क्यों पहली बार, सब कुछ छोड़ा, डायमंड बिजनेस छोड़ा, ये छोड़ा, वो छोड़ा, घर छोड़ा, बड़ा बड़ा बन के वृंदावन गए, अब क्यों जमीन बेचो लेचो, बिल्डिंग बनाओ खरीदो बेचो, ये सब उधर से ही पैसा क्यों मैनिपुलेट कर रहे हो, करना है तो इधर क्या कमी है, बॉम्बे में करोड़ों रुपया है, महासागर है रुपये का बॉम्बे, तुम थोड़ा भी दृष्टि डालो और मेहनत करो तुमको बहुत मिलेगा। अरे मजदूर लोग कमा रहे 8-8, 10-10 हजार रुपया, गांव में पढ़ा लिखा 3,000 में नौकरी कर रहा है, बॉम्बई में मजदूर लोग 10-10, 12-15 हजार रुपया कमा रहे आराम से वट के साथ। 8 बजे बोलते आता टाइम नहीं माला, मीना यनर बोल देते साहिबी में रहते। अब वो सब छोड़ के धाम में जाने का अगर प्लान है, विचार है, इच्छा है, तो वहां पैसे में चेतना क्यों रखते हो? घर खरीदने की ताकत नहीं थी, अभी जमीन खरीद लेते हो, व्हाट इज द यूज, ये सब नाटक क्यों करते हैं हम लोग? एटलीस्ट बी ऑनेस्ट, एटलीस्ट बी सिंसियर। मेरे से भक्ति अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन एटलीस्ट नियमों को तोड़ने में मैं सावचेत रहूं और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करूं, हर कमजोरियों से स्वीकार करने से धीरे 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 कृपा की आशा रहती है। आई थिंक टाइम हो गया तो आप फिर 1-to-1 चाहे तो बात कीजिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर सब लोग को रोकना पड़ेगा। सॉरी, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भागवतम की जय, ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।